प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज हमारी मदद कीजिए।
मूसलाधार बारिश में खड़े उस शख्स को देखते हुए अरुणिमा मदद मांग रही थी। वो आदमी हैरानी से अरुणिमा को देखते हुए बोला, अरुणिमा, तुम अरुणिमा हो? अरुणिमा मेहरा, बृजेश मेहरा की बेटी। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक गई। वो इस शख्स को नहीं पहचानती थी, लेकिन वो उसका और उसके पिता का नाम बिल्कुल सही ढंग से ले रहा था, जैसे उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हो। वो उसे हैरानी से देख रही थी। अरुणिमा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं निशांत कोहली हूँ, अवनी का कजिन। हम मिले थे अवनी के बर्थडे पार्टी में। अरुणिमा उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ आस्तिक की तरफ था। वो उसे समझाने या उसकी बातों को सुनकर अपने अतीत में जाकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। अचानक आस्तिक का ख्याल आ गया। उसने निशांत की बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अपने हाथों के इशारे से कहा, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, उन्हें गाड़ी से बाहर निकालना है। निशांत ने अरुणिमा की दिखाई दिशा की ओर देखा तो वो हैरान हो गया। आस्तिक आधी गाड़ी के बाहर और आधी अंदर सीट पर फंसा हुआ था। निशांत की आंखें बड़ी हो गई और वो तेजी से गाड़ी की तरफ भाग गया। उसने जल्दी से जाकर आस्तिक को देखा। अरुणिमा भी तेजी से दौड़ती हुई वहां आई और आस्तिक को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। निशांत आस्तिक को खींच रहा था, तभी उसकी नज़र इंजन ऑयल कर गई। गाड़ी के अंदर से धुआं देखकर वो हैरानी से बोला, अरुणिमा, हमें इन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा, इंजन ऑयल लीक कर रहा है, शायद गाड़ी के अंदर कुछ जल रहा है, अगर हमने जल्दी इन्हें बाहर नहीं निकाला तो गाड़ी में आग लग जाएगी। अरुणिमा ये सुनकर और ज्यादा डर गई और वो रोते हुए बोली, तो जल्दी से बाहर निकालो। निशांत खड़ा हुआ और अरुणिमा से बोला, अरुणिमा, मैं इस गाड़ी को धक्का दे रहा हूँ, जैसे ही ये गाड़ी थोड़ी सी ऊपर उठती है तुम अपने पति को खींचकर बाहर निकाल लेना, देखो हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। अरुणिमा बुरी तरह डर गई थी, उसने अपना सर हाँ में हिलाया। निशांत ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर खींची और फिर गाड़ी पर अपने दोनों हाथ रखते हुए जोर से धक्का दिया। गाड़ी हवा में थोड़ी ऊपर उठी और अरुणिमा जल्दी से आस्तिक को बाहर खींचने लगी। वो आस्तिक को बुरी तरह खींच रही थी। आस्तिक के पैरों में कांच के टुकड़े चुभ गए थे, लेकिन अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आस्तिक को तब तक बाहर नहीं निकाला जब तक उसके पैर गाड़ी से बाहर नहीं आ गए। एक बार आस्तिक बाहर आ गया तो निशांत गाड़ी को वहीं छोड़कर झुककर आस्तिक को उठाया। निशांत ने आस्तिक का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ अरुणिमा के कंधे पर। वो दोनों आस्तिक को निशांत की गाड़ी तक ले जा रहे थे। जैसे ही निशांत ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और आस्तिक को अपनी पिछली सीट पर बैठाया, वैसे ही उसे जलने की आवाज़ आई। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो आस्तिक की गाड़ी धुआं धुआं होकर जल रही थी। ये नज़ारा देखकर अरुणिमा का दिल दहल गया। अगर उसने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया होता तो आस्तिक के साथ बहुत बुरा हो सकता था। आस्तिक, तुम ठीक तो हो ना? अरुणिमा आस्तिक के पास बैठी थी और उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने महसूस किया कि आस्तिक का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। ये देखकर अरुणिमा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने जल्दी से अपना रेनकोट आस्तिक के ऊपर लपेटा। अब तक निशांत अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि अरुणिमा अपना रेनकोट आस्तिक को पहना रही है तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने हैरानी से कहा, ये क्या कर रही हो? तुम अपना रेनकोट इन्हें क्यों पहना रही हो? बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है, तुम्हें भी तो ठंड लग जाएगी ना? लेकिन अरुणिमा आस्तिक को अच्छे से ढंकते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन आस्तिक का शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसलिए इस रेनकोट की जरूरत इस वक्त आस्तिक को ज्यादा है। निशांत ने सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, देखो अरुणिमा, बाहर मौसम बहुत ठंडा है और तुमने बहुत पतली ड्रेस पहनी हुई है, अगर तुम्हें ठंड लग गई और तुम बीमार पड़ गई तो अपने पति की देखभाल कैसे करोगी? उसे ठीक करने के लिए पहले तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। लेकिन अरुणिमा ने धीरे से आस्तिक का सर अपनी गोद में रखा और उसके हाथ को सहलाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुद को संभाल लूंगी। निशांत ने अपना सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी, जिद्दी। बताओ तुम्हारा घर किस तरफ है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। ग्रीन माउंटेन, अरुणिमा ने बताया। अरुणिमा के बताते ही निशांत मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की और बोला, ग्रीन माउंटेन हिल स्टेशन, मैं भी वहीं जा रहा था। निशांत गाड़ी चला रहा था और पीछे की सीट पर अरुणिमा आस्तिक को लेकर बैठी हुई थी। वो लगातार आस्तिक के हाथों को अपने हाथों से रगड़ रही थी, उसे गर्मी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने कई बार आस्तिक के बालों से पानी पोंछने की कोशिश की और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे गर्मी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर तभी उसे निशांत का ख्याल आया। वो एकदम से निशांत की तरफ देखने लगी और याद करने लगी कि उसने क्या कहा था। अवनी का कजिन, अवनी, अरुणिमा की बचपन की दोस्त और बेस्ट फ्रेंड अवनी, जो इस वक्त विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, लगातार अरुणिमा के साथ सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, और उसका कजिन निशांत। ये याद करते हुए अरुणिमा अपने पिछले दिनों में चली गई जब उसकी शादी नहीं हुई थी और वो अवनी के साथ अपनी जिंदगी खुलकर जीती थी। अवनी के बर्थडे पार्टी में उसकी मुलाकात अवनी के एक कजिन से हुई थी, लेकिन ये मुलाकात इतनी छोटी और कैजुअल थी कि अरुणिमा को याद तक नहीं थी, और अगर याद भी होती तो शायद वो निशांत को पहचान नहीं पाती, क्योंकि ये 2 साल पुरानी बात थी और तब निशांत का चेहरा कुछ अलग सा था। उसके चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं थी और उसके बाल भी थोड़े लंबे थे, पर अब जो इंसान गाड़ी चला रहा था उसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे और उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी भी थी, थोड़ा याद करने के बाद अरुणिमा को याद आया कि ये वही शख्स है जो 2 साल पहले अवनी की बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे मिला था। आखिरकार निशांत की गाड़ी अरुणिमा के घर पहुंच गई। वो अरुणिमा के बंगले के सामने खड़ा था। लो मैडम, आ गया आपका घर, वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू निशांत हमारी मदद करने के लिए। अरुणिमा ने आस्तिक को सहारा देकर सीट पर बैठाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अरुणिमा गाड़ी से बाहर निकलने वाली थी, निशांत वहां आ गया और उसकी मदद की। जैसे ही आस्तिक बाहर निकला, अरुणिमा ने आस्तिक को सहारा देते हुए कहा, इट्स ओके निशांत, इसके आगे मैं संभाल लूंगी। तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है और हमारी वजह से तुम काफी लेट भी हो गए हो। लेकिन निशांत ने आस्तिक को अरुणिमा पर नहीं छोड़ा, बल्कि आस्तिक को सहारा देते हुए बोला, तुम्हारा थैंक यू मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक और बार थैंक यू कह देना जब मैं तुम्हारे पति को घर के अंदर पहुंचा दूंगा। और ये मैं किसी और इरादे से नहीं कह रहा हूं, बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम अपने पति का वजन अकेले संभाल नहीं पाओगी। तुम्हारे पतिदेव काफी हैवी हैं। सच कहूं तो अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेला ही नहीं संभाल पाता। निशांत की बात सुनकर अरुणिमा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो गलत नहीं कह रहा था। वो दोनों मुस्कुराए और साथ मिलकर आस्तिक को घर के अंदर ले गए। जैसे ही उन्होंने आस्तिक को घर के बड़े सोफे पर लिटाया, तभी अरुणिमा ने राहत की सांस ली। लेकिन बाहर एक बार फिर मौसम खराब हो चुका था और बादल फिर गरजने लगे थे। अरुणिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और निराशाजनक आवाज में बोली, ये बारिश कब रुकेगी? निशांत ने भी बाहर देखते हुए कहा, ओह माय गॉड, अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगा? निशांत को परेशान देखकर अरुणिमा ने कहा, सॉरी निशांत, मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गए हो। तुम बैठ जाओ, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ।
लेकिन निशांत ने तुरंत कहा, नहीं, मैं कॉफी नहीं पीता और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने पति का ख्याल रखो, उन्हें इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। वैसे लकी मैन जो उसे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। अरुणिमा के चेहरे पर एक निराशाजनक मुस्कान थी। हर कोई आस्तिक से यही कहता था कि वो बहुत नसीब वाला है जिसे अरुणिमा जैसी लाइफ पार्टनर मिली है।